अध्याय दो, त्रिकोणीय व्यापार, ब्रिटेन भारत चीन, ट्राइएंगुलर ट्रेड, ब्रिटेन इंडिया और चाइना। यह अध्याय शामली सक्सेना, जो मुंबई विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका है, उनके द्वारा लिखी गई है। कुआंग चोउ बड़े सफलतापूर्ण ढंग से तथा भारी पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। 8वीं शताब्दी के बाद विदेशियों, विशेषकर अरबों के साथ इस व्यापार का पतन हो गया। 16वीं शताब्दी में पाश्चात्य शक्तियों ने कुआंग चोउ आकर इस समुद्री व्यापार को फिर से चालू कर दिया। चीन ने विदेशियों से सीधा संबंध न्यूनतम दर्जे तक ही रखा तथा आमतौर पर व्यापारियों तथा धर्म प्रचारकों की ओर एकांतवादी नीति अपनाई। चीन अपने इस नीति को आत्मनिर्भरता तथा रूढ़िवाद के साथ साथ विदेशियों के प्रति अरुचि तथा नापसंदगी के आधार पर बनाए रख पाया। चीन की बंद द्वार नीति के दो मुख्य कारण थे। पहला, पुर्तगालियों की ईस्ट इंडीज पर विजय तथा स्पेन का फिलीपींस में आक्रामक व्यवहार, और दूसरा, 17वीं शताब्दी के आरंभ में चीन की आंतरिक परिस्थितियां, जिसमें मिंग राजवंश को अपनी गद्दी बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। सोलह सौ चौवालीस ईस्वी में चीन में छिंग राजवंश की स्थापना हुई। ऐसा लगभग उस समय हुआ जब डच तथा अंग्रेज कुआंग चोउ पहुंचे, जिन्होंने बाद में चीनी व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। डच लोगों ने 1602 ईस्वी में स्थापित नीदरलैंड ईस्ट इंडीज डच लोगों ने 1602 ईस्वी में स्थापित नीदरलैंड इंडीज कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियां स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कुआंग चोउ में व्यापार करने की अनुमति लेने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाली प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण डच लोग असफल रहे। उन्होंने कई दूत पेचिंग भेजे तथा वाणिज्यिक सुविधाएं एवं चिंग दरबार से राजनैतिक संबंध कायम करने के उद्देश्य से एक निम्न करदात्री इन्फेरियर ट्रिब्यूट बियरर का दर्जा स्वीकार करना भी मान लिया। उन्होंने 1762 ईस्वी तक, जब उन्हें कुआंग चोउ में अपना कारखाना कायम करने की अनुमति प्राप्त हुई, आमतौर पर गुप्त ढंग से ही व्यापार किया। अंग्रेजों ने चीन में अपना प्रभाव बढ़ाने में काफी दिलचस्पी ली। वैसे आरंभ में उन्हें भी चीन से व्यापार करने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडीज के लाभदायक मसालों के व्यापार की ओर ज्यादा ध्यान दिया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत से इस कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कारखानों की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ से ही चीन के साथ वाणिज्यिक संबंध कायम रखने में काफी दिलचस्पी दिखाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों ने 1634 ईस्वी में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर से एक संधि की, जिसके अंतर्गत 1637 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश जहाज ने मकाओ बंदरगाह में प्रवेश किया। अब चीन से ब्रिटिश व्यापार आरंभ तो हो गया, लेकिन कुछ समय तक अंतर्राष्ट्रीय ईर्ष्याओं तथा छिंग सरकार के व्यापार विरोधी रुख और व्यापारियों एवं विदेशियों के प्रति उदासीनता के कारण इसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। चीनी सम्राट चियांगिस ने व्यापारियों तथा विदेशियों के प्रति छिंग सरकार की नीति को उदार बना दिया और 1685 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियों के लिए सभी बंदरगाहों को खोल दिया। लेकिन सम्राट छियनलुंग ने सभी व्यापारिक गतिविधियों को केवल कुआंगचौ तक ही सीमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुआंगचौ साम्राज्य का सबसे बड़ा तथा समृद्ध केंद्र बन गया। छिंग काल के दौरान कई तौर तरीकों तथा रस्म रिवाजों का विकास हुआ, जिनसे करदात्री प्रणाली ट्रिब्यूटरी सिस्टम बने। पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या 25। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाने के कारण वह काफी भाग्यशाली रहा। इस कारण विदेशों में विस्तार और उपनिवेशिक विजय के लिए नई प्रेरणाएं पैदा हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड में ब्रिटेन का सुदृढ़ वित्तीय ढांचा, ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक शक्ति, उसकी नौसैनिक सर्वोच्चता तथा विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण ब्रिटेन का दर्जा पूरे विश्व में ऐसा हो गया था जहां से उसकी शक्ति को ललकारना आसान न था। ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने लिए सुरक्षित मंडलियां प्राप्त करना था। इस दृष्टि से चीन और भारत ब्रिटेन के वाणिज्यिक विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना तथा चीन में ब्रिटिश व्यापार का विस्तार, दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन की कई श्रृंखलाएं लगभग समकालीन थी। उधर 1757 ईस्वी में कुआंगचोउ चीन में व्यापारिक गतिविधियों का शक्तिशाली केंद्र बना। उधर 1757 ईस्वी कुआंगचोउ चीन में व्यापारिक गतिविधियों का शक्तिशाली केंद्र बना और इधर ब्रिटेन सबसे बड़ा आयात निर्यात करता। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय सत्रह सौ सत्तावन ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय ने अंग्रेजों के लिए बंगाल पर विजय के द्वार खोल दिए। 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के तहत उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करके स्वयं के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त कर ली। इसके पश्चात साम्राज्यवादी कब्जों के फलस्वरूप संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली गई। विशेषकर 1818 ईस्वी में मराठा संघ के पतन तथा विसर्जन के फलस्वरूप मालवा क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ लग गया। पहले से ही बंगाल और बिहार के अफीम पैदा करने वाले क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग चुके थे। मालवा प्राप्त हो जाने के बाद और भी ऐसे क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए जहाँ से अफीम प्राप्त की जा सकती थी। इसके नतीजे बड़े गंभीर निकले। चीनी व्यापारी पर नियंत्रण चीनी व्यापार पर नियंत्रण भारत के अधिक के निर्यात, जो पहले भारतीय कपास व बाद में मुख्यतः अफीम थी, के द्वारा स्थापित हुआ। इस व्यापार पर राजकीय एकाधिकार था जिससे सरकार को भारी लाभ होता था तथा इसी कारण इसे अंग्रेजों ने बड़े नियोजित ढंग से विकसित किया। चीनी व्यापार भारत से ब्रिटिश रकम भेजने का मुख्य साधन बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय कपास चीन को बेचती थी तथा वहां से इसके बदले में चाय, रेशम तथा अन्य वस्तुएं ब्रिटेन के लिए खरीदी जाती थी। इससे आधिक्य भारतीय राजस्व बड़ी आसानी से इंग्लैंड पहुंचाया जा सकता था। यही त्रिकोणीय व्यापार था। जाहिर है कि चीन सबसे अधिक बिकाऊ भारतीय वस्तु अफीम को दूर रखना चाहता था, क्योंकि इससे न केवल व्यापार का संतुलन इंग्लैंड के पक्ष में हो गया बल्कि चीनी सरकार के लिए सामाजिक एवं नैतिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। कुआंगचोउ में ब्रिटिश व्यापार तीन विशेष समूहों द्वारा संपन्न किया जाता था, कंपनी, निजी व्यापारी तथा देशीय व्यापारी। कंपनी का मुख्य कार्यालय लंदन में था जहाँ से संपूर्ण चीनी व्यापार का सर्वेक्षण तथा नियंत्रण किया जाता था। निजी व्यापारी लाइसेंस प्राप्त उन जहाज़ों के कमांडर एवं ऑफिसर थे जो इंग्लैंड और चीन तथा भारत और चीन के बीच चलते थे। देशीय व्यापार वह व्यापार था जो कि भारत और चीन के बीच भारत में रह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंस शुदा अंग्रेज व्यापारियों तथा भारतीय मूल के व्यापारियों द्वारा किया जाता था। समय के साथ आयात और निर्यात की व्यापारियों द्वारा समय के साथ आयात और निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्यों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, लेकिन कंपनी के व्यापार तथा देशीय व्यापार में एक प्रकार का संतुलन बनाकर रखा गया। कंपनी द्वारा आयात की गई वस्तुओं की कीमतों की तुलना में निर्यात की गई वस्तुओं की कीमतें अधिक थी। जबकि देशीय व्यापार के संबंध में स्थिति इसके विपरीत थी। कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए अधिक के धन को बढ़ रहे निर्यातों में लगाया गया।